क्योंकि विशेष रूप से इस ग्रंथ का जो वैष्णव के निकट अध्ययन नहीं किए होंगे उनके समझ में नहीं आएगा। बड़े बड़े दिग्गज पंडित भी हो सकते हैं, भागवत के वक्ता भी हो सकते हैं, लेकिन उन सिद्धांतों को जानना उनके लिए भी बड़ा भारी कठिन है, दुर्लभ। शुद्ध गुरु की सेवा करने वाले और पूर्व जन्म की सुकृति से इन सब तत्वों को हृदयंगम किया जा सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे सिद्धांत देवताओं के लिए भी दुर्लभ। नारद जी के हृदय गुहा में ये सब चीज़ें हैं वो बतला रहे हैं, इसलिए नारद जी सब जगत के गुरु। तो कल उन्होंने बतलाया, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण ने ऐसी लीला माधुरी की चोखे तक लिखिए भेजा तो उन्हें ना छीड़े दिखे चाकू नहीं आ रहा हमें एम छीड़े दिखे जो दिए दिखे बोलिए, यदि ठीक से नहीं सुनेगा तो बोल। नारद जी ने बतलाया कि कुछ लोग ये कहते हैं भगवान ने गोपियों को मोहित कर दिया, बावरी उनको बना दिया। नारद जी कहते हैं कि वो कहते हैं तो कहें किंतु विचार यह ठीक नहीं है, गोपियों ने ही कृष्ण को मोहित कर दिया और उनको नचा दिया, कृष्ण ने नहीं। जो नहीं जानते हैं वो नहीं जानते हैं। हम ब्रज में जब गए तो देखा जी गोपियों ने और गोपों ने उनको मोहित कर दिया है, उनको शुद्ध बुद्ध नहीं है जी मैं भगवान हूँ, भगवत्ता भी एकदम भुला दिया। मैं गया तो वो बच्चों के साथ जब खेल रहे थे मधुमंगल की कल की कथा सुनाई, उनके साथ में खेल रहे थे, या जब रास हो रहा था तो नारद जी यदि जाते तो उनसे बातचीत कृष्ण करते कि नहीं करते? नारद जी वहाँ पर प्रवेश कर सकते थे रास में? प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो वहाँ पर यदि जाते तो बातचीत करने का मौका मांग क्या मैं कोई खड़े रहते परिकर करते निकल जाओ यहाँ से, खबरदार मत आना, बातचीत नहीं करते। और जिस समय में गोचारण करते थे सखाओं के साथ और उनका जूठा खा रहे थे तो नारद जी यदि कृष्ण से बोलना चाहते तो कृष्ण उनसे बातचीत करते कि नहीं? नहीं करते, डर के मारे जाते नहीं वहाँ। थोड़ी सी ऐश्वर्य युक्त लीला की थी, केसी को मारा और मार करके जरा थोड़े से पृथक सखाओं से थे और गोपियाँ तो वहाँ पर थी नहीं, निर्जन उनको पाया और बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम करके और तब निवेदन उनको किया, प्रभु तो आपकी बड़ी विचित्र लीलाएँ हमने देखी, मैं तो मुक्त हो गया, किंतु हमारी इच्छा है जो कंस को मारता हुआ भी आपको देखूं। और कंस के जो परिकर हैं चारुण मुष्टिक इत्यादि को ऐरावत कौन आती कुबले को और जो दैत्य दानव हैं जरासंध और उसके अनुगत दंतवक्र कालजवन जरासंध इत्यादि सब को मरता हुआ आपके हाथों से देखूं और देखूं ये द्वारका में आप महिषियों के साथ में कितना 16108 महिषियों के साथ में आप वहाँ लीलाएँ कर रहे हैं और वहाँ पर रुक्मी को आपने वक्त किया और सब जो लीलाएँ की वो भी आपका दर्शन करना चाहता हूँ। और मैं देखना चाहता हूँ कि आप करोड़ों करोड़ों लड़कों के साथ में नातियों के साथ में ये सब लीलाएँ कर रहे हैं और पांडव लोग बड़े विपत्ति में पड़े हुए हैं, उनको आप उद्धार करेंगे। महाभारत के युद्ध में जितने भी राजा के रूप में असुर लोग जन्म लिए हैं वो सबका आप सफाया, पृथ्वी का भाव उभारण है। और अंत में मैं आपकी द्वारका की और भी कुछ जो अवशिष्ट लीलाएं हैं उसको व्यक्त नहीं किया, मौसल लीला इत्यादि का भी दर्शन ये कह के आप तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से देवताओं के कार्य के लिए जगत में आए पधारे। कृष्ण उनके तरफ में देखने लगे तब उनको कहीं स्मरण मारे, ये तो बहुत बहुत सभी काम कर रहे, तब उनको चिंता आई, भगवत्ता की याद आई। उनको याद ही नहीं रही थी। इसलिए नारद जी कहते हैं मुझे अनुभव है, एक तो मैं डर के मारे पहले नहीं गया, ये लीला में कहीं विघ्न हो जाएगी, और अब गया भी तो डरते डरते गया, और चलाकी चतुराई के साथ में स्तव स्तुति करते हुए तब मैंने यह बात उनसे बोली। इसलिए यह बात ठीक है, गोपियों के और गोपों के संग में ही अपनी भगवत्ता को भी भूल गए और साधारण मनुष्य की भांति है। एक तो ये बात, दूसरी बात ब्रह्मा और उद्धव दोनों ने प्रार्थना की थी कि गोपियों की चरण धूलि को पाने के लिए ब्रज में तृण लता गुल्म हम हो जाए और उनकी चरण धूलि पड़े। दोनों ने मांगा तो दोनों बराबर हुए। अजय नहीं ऐसा मत समझो, ब्रह्मा जी ने गोपियों की चरण धूलि किस लिए चाहिए थी कि मैं नित्य परिकर होकर के भगवान का दास हो जाऊं, उनकी दासता को सेवा को पाने के लिए वैकुंठ में जाकर उनकी सेवा मुझे मिले, बस इसी के लिए क्या गोपियों की कृपा होने से यह सहज ही चुप्पी बजाते हुए ये काम किया। और उद्धव जी ने, अरे उद्धव जी तो भगवान के दास थे ही, परिकर नित्य परिकर है, इसलिए कोई दुर्लभ वस्तु के लिए उन्होंने ऐसी चाहा। जिन गोपियों ने अपने, उन्होंने कहा कतमांग रजो विषेकम, ब्रह्मा जी ने किसी एक ब्रज में रहने वाले लोगों की चरण धूलि मुझे मिल जाए, किसी एक व्यक्ति, कोई भी, कौन कोई भी, ब्रजवासी में से कोई भी हो, दास सखा कोई भी हो, माता पिता किसी की चरण धूलि, नहीं हुआ तो जमादारनी की भी चरण धूलि मिल जाए। किंतु उद्धव जी ने ऐसा नहीं कहा, जिन लोगों ने अपने कुल धर्म को, आर्य धर्म माने पति धर्म को, सबको जलांजलि देकर के छोड़ करके और आपकी सेवा की और आप उनके वशीभूत हैं, उंच की चरण धूलि के लिए, इसलिए उद्धव जी श्रेष्ठ हुए। ये उन गोपियों की अर्थात ललिता विशाखा और श्रीमती राधिका की, क्यों वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभिक्षुषा, ये मतलब है मैं गोपियों की चरण धूलि चाहती हूँ। कौन गोपियां? नंद ब्रज, और बतलाया आगे आशा हो, उन्होंने ये कहा कि नयन सियों श्री लक्ष्मी जी भी जिस चीज को नहीं प्राप्त कर सकी, उन गोपियों का ऐसा सौभाग्य हुआ रास में, तो जिन्होंने रास किया था उन गोपियों की चरण धूलि चाहती। ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं, वो तो किसी भी एक ब्रज में रहने वाले व्यक्ति की चरण धूलि को उन्होंने मांगा था, उन्होंने बस सेवा की भावना से जो सेवक मांगे, इसलिए उद्धव जी उनसे बहुत आगे। तीसरी बात, ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के गुरु हैं, और इंद्र इत्यादि देवताओं के भी प्रपितामह और उनके गुरु हैं, जगत गुरु हैं। तुम्हारा भाई क्या अरे तो तुम घड़ी सुनो ना, बोलो बोलो, अरे तो आगे भी आज तो बतलाए कि ब्रह्मा जी इंद्र के भी प्रपितामह हैं और हम संप्रदाय के गुरु हैं, वेदों के वक्ता हैं। ये ब्रह्मा जी के ऊपर में, ब्रह्मा जी से बातचीत नहीं की भगवान ने, और वो स्तव स्तुति करते रहे, अंत में चले गए, उन पर उसने बातचीत भी नहीं की, और इंद्र से बातचीत थोड़ी सी की, क्या बात किया, आइंदे से ऐसा मत करना, अब जाओ जा करके अब वहां पर सुख को पकड़ो अपने, अब तुम्हें कोई डर है की बात नहीं, चलो इतनी बात, और तुम मत में अभिमान में मत बैठना, और हमारे भक्तों को साधारण रूप में मत देखना, यदि भक्तों के प्रति कुछ भी अवज्ञा हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये सब सिखलाया। वो भी बात उनसे किस लिए की, इसलिए कि जो सुरभि को साथ लेकर के, मैया को लेकर के आए थे, जिसकी कृष्ण सेवा करते हैं, उनके आश्रय में आए शरणागत होकर के, अन्य इनसे बातचीत नहीं करते, ब्रह्मा के लिए आए थे, इनसे बातचीत नहीं, और ये उनकी पूज्य को लेकर के आए थे, इसलिए इनसे बात। और सबसे बड़ी बात, गिरिराज गोवर्धन का आश्रय लिया, उनके ऊपर तब वज्र गिराए और उनके ऊपर में वर्षा की, किंतु इनका तृण भी भंग नहीं किया, कुछ भी इनका एक लताओं के उनके दो पत्ते भी कट करके नहीं गिरा सके, उनको खरोंच सी नहीं मालूम हुई, उनको ये हुआ कि कृष्ण के कानी अंगुली के ऊपर में जो बैठे हुए हैं, कृष्ण में धारण किए हुए हैं, और गोप गोपियों की मैं ऊपर से रक्षक बना हुआ हूँ, भगवान ने हमें रक्षक का पद दे दिया, मैं इनकी सेवा कुछ कर रहा हूँ, इसलिए इतने आनंदित हुए जो वो खरोंच भी इनको ऐसी खुजलाहट सी लगती है जैसे कोई खुजलाहट, इसलिए बड़े प्रसन्न है। इसलिए कहते हैं कि उनके आश्रय करने से आज ब्रह्मा जी से बहुत नीचे की व्यक्ति इंद्र आज भगवान के कुछ कृपा पात्र बन गए। और दो चार बात, एक आदमी है कोई आया, मैं उसे बातचीत नहीं किया, बिगड़ गया उसके अपराध को देखकर, और कोई आदमी अपराध किया है, क्यों किया, थोड़ा सा कान मल दिया या थप्पड़ दे दिया, समझो जैसे उनका क्रोध उतर गया नहीं? और जिससे बातचीत नहीं किया उसका क्रोध ही नहीं उतरा, तो इसलिए क्रोध उतर जाना अच्छा है, उसे स्नेह आ जाएगा, तो फिर वो कहेंगे जाओ इसको खाना दे दो, प्रसाद दे दो, खिला दो अच्छी तरह से मारने के बाद। अब जिसे बातचीत नहीं करेंगे उसे बातचीत नहीं, अब बहुत दिनों तक जब तक क्रोध नहीं करेगा। तो ब्रह्मा जी से तो बातचीत नहीं की, आप इनसे थोड़ा सा उन दोनों का आश्रय लेने की वजह से ऊपर, किंतु इसे आप लोग मत समझ लेने, जो ब्रह्मा जी से भी इंद्र बड़े हैं ये मत समझ लेना, कृपा की कृपा तो की ने? एक आदमी अपनी गृहिणी से बिगड़ गया और उनसे बातचीत नहीं किया ने? और एक नौकर है उसको कान पकड़ करके थप्पड़ दे करके उसे खबरदार ऐसा मत करना, तो गृहिणी से वो बड़ा हो गया नौकर, ऐसा मत समझना। ब्रह्मा जी हमारे गुरु हैं, तत्व को जानने वाले हैं।
ब्रह्मा जी के बछड़ा गोबर तो छुआ मांग लेते पहले
हैं,
ब्रह्मा जी दत्तज्ञ हैं तो बछड़ा को और था,
पहले
छुआ मांग लेते।
अरे भाई पता जी, मैं तो उनका पुत्र हूँ, आज ना तो कल वो करेंगे जाएंगे कहाँ, पुत्र का अभिमान है ना, इसलिए देखते हैं कि आज तो रोज क्यों है, फिर तो अपने घर के आज फिर मना इसलिए ब्रह्मा जी को छोटा मत समझ लेना। इंद्र जी जितने भी हैं, इंद्र जी मुक्ति इंद्र की नहीं होगी, और इसके बाद में ये मुक्ति लाभ करके ब्रह्मा जी भगवान का सेवक बन करके चले जाएंगे आगे, इसलिए बड़े तो नहीं है किंतु थोड़ी सी कृपा का तो भाव है, इसलिए कृपा का भाव। एक बात और इसमें है, जिसका आप आश्रय कर रहे हैं भगवान को भजन करने के लिए, वो आश्रय कैसा है, किस जाति का है, भगवान की कैसी कृपा को पाया उस पर निर्भर करता है। हमको नौकरी लेना है किसी से, तो उनके ऑफिस में एक अर्दली है, उसके पास भैया हमारी नौकरी साहब से कह देना लगा है, और उनकी गृहिणी के पास में कोई पहुंच गया है, मैया जरा मैं खाना पीना हमारा नहीं हो रहा, मैं बड़ू ये तल हूँ, मैया जरा उनसे कह दीजिए, अच्छा अच्छा ठीक है मैं कह दूँ, तो चपरासी की बात लगेगी कि उनकी बात लगेगी, चपरासी डरेगा और वो इच्छा करे तो उनको कान पकड़ करके करा लेंगे, जैसे तैसे करा लेंगे, वो कहेंगे नहीं करूँगा तो करना पड़ेगा आपको, तो करा लेंगे, कितना अधिकार है। ऐसे भक्तों में जो जितना ही उच्च अधिकारी भक्त है उसका आश्रय ग्रहण करने से भगवान की कृपा उतनी जल्दी मिलती है, इसलिए राधिकार दासी यदि हो अभिमान शीघ्र मिले तभी गोकुल। एक आदमी ब्रह्मा का आश्रय लिया, उसमें हो सकता है कि भगवान कुछ कृपा करें, खूब विलम्ब हो जाएगा। और यदि राधिका जी के पास में पहुंच गए, उनकी दासियों की दासियों के पास में, और उनके शरणागत हो गए, तो क्या होगा? इसलिए जितने प्रकार के आश्रय हैं उनमें सबसे बड़ा आश्रय है। और गोपियों को आश्रय करने के लिए सबसे जो बड़े आश्रय तीन जो कल बतलाया था, भक्तों में हरिदास वर्य जब श्रेष्ठ गिर जाए, दया के भंडार है। और दूसरी जिनके ऊपर में कृष्ण ने भार दिया जब ब्रज में तुम प्रवेश किसी को करा सकती हो, हमसे मिलन करा सकती हो, वो है ये साक्षात वृंदा देवी। और तीसरी है कि हमारे भक्तों को कृपा करने के लिए तुम जमुना जी के रूप में पानी के रूप में परिवर्तित करो और सब पर कृपा करो, वो है जमुना। तीनों का यदि आश्रय कोई ले ले, या तीनों से किसी एक का कोई आश्रय ले, तो ब्रज का भाव जल्दी से सहज रूप में हो जाए और नहीं बहुत विलंब हो जाए। ये सब साधन, इसमें सब कल हम लोगों ने इसमें विशेष रूप से हमने व्यक्त किया। यदि भजन करने की लालसा हो जाए तब तो फिर ऐसे जैसा ये बतला रहे हैं ऐसे हम लोगों को प्रवेश करना पड़ेगा, आने तक खेल कूद करके ऐसी जगत के चीजों में ही मत रह गए तो बस गुल्ला में चला गया, मनुष्य जीवन बहुत चला गया। इसलिए इन सब चीजों में प्रवेश करने के लिए ऐसे भाव हम लोग करें। इसलिए श्रवण जो है यही साधन है। परीक्षित महाराज जी को उन्होंने श्रवण कराया तो श्रवण करने से भगवान को पा गए, ऐसे श्रवण करने से साथ ही साथ हमारे हृदय की भावनाएं बन जाती और उस भाव के आस्वादन करने के लिए कृष्ण आते हैं और उसी के वशीभूत होते हैं। यह भाव ही मंत्र और औषधि के समान है जो कृष्ण को भी आकर्षित है। ये भाव कहाँ से पैदा हो? यदि उसका हृदय संस्कृत है अर्थात शोधन किया हुआ है, मलों से रहित है, कामनाओं से रहित है, तब होगा। इसको आगे ये साधन के रूप में बतलाएंगे। तो कह रहे हैं यहाँ अब थोड़ा सा विस्तार पूर्वक कह रहे हैं, हमने कल को ऐसे ही संक्षेप में बतलाया था। यहाँ सतकोष्ठरोकेषु महाद्भुतस्य शक्ति सदा प्रेम भरेण तेषु जयागतम देश सुतम तुमंतम विदिम नमस्तम न दिदीक्षते। ब्रजवासियों के प्रति कृष्ण की महा अद्भुत प्रेम पूर्ण आसक्ति है। जितने भी ब्रजवासी हैं उनके प्रति कृष्ण की आसक्ति है, प्रेम पूर्वक आसक्ति है, महा अद्भुत, उनके बिना रह नहीं सकते। इसलिए ब्रह्मा जी को की स्तुति भी वो नहीं सुना उन्होंने कि क्या ब्रह्मा कर रहे हैं, एक भी स्तुति पर ध्यान नहीं दिया। और लंबे चौड़े 14 अध्याय में बहुत से श्लोकों में उनकी स्तुति, तो ध्यान ही नहीं दीजिए क्या ब्रह्मा कर रहे हैं, कौन है, क्या है। और बच्चे कर रहे हैं चौमा, देखो चौमा आ गया, चौमा मैंने चौमुहा, इसलिए उस स्थान का नाम भी हो गया चौमा। तो बच्चे उनको चिढ़ाया, ये कहाँ से आ गया चौमा, चार मसला। तत्पाद पद्मी तत्पाद पद्मी गतिश्च मात्विशान संभाव संभाषित नो अशक्यते अपि क्षणम् तैर्मयो हितो असौ किल गोष्ठ नागरो औषधि मंत्र भी। ब्रह्मा की तो बात में क्या कहें, ब्रह्मा की तो ऐसे ही बात है, मुक्त भी नहीं है और ऐसे भाव भी उन्नत भाव उनके नहीं है। ब्रजवासी लोग कृष्ण को मन मंत्र और औषधि से वशीभूत कर देते हैं। हमने सुना था जो आज शाम में जो मंत्र जानने वाले हैं, यदि पुरुष गए तो उनको मंत्र से उनको फेड़ा बना देते हैं। फेड़ा समझते हैं, भेड़ बकरी तो फेड़ बना देते हैं और उनको साथ में रखते हैं। कभी पुरुष बना देते हैं या स्त्री बना लेते हैं, किंतु तो साथ फेड़ बना करके रखते, ऐसा मंत्र जानते हैं। अभी भी सुनते हैं कभी कभी हमारे पास में ऐसे सब लोग आते हैं, जिन्हें जी ने कैसा ये मंत्र कर दिया है कि उसका एकदम पीछे पीछे चल रहा है, उसकी बात का अतिरिक्त और कुछ मानता नहीं, एकदम पसीपुत हो गया है, जैसी इच्छा तैसे ही करा लेता, उसका एकदम विचार नहीं करता। ऐसा होता है, सम्मोहन मंत्र होता है, उसके द्वारा मोहित कर लिया जाता है। तो न जाने ब्रजवासी क्या सम्मोहन मंत्र या औषधि जानते हैं, वो तंत्र एक होता है शास्त्र, बचपन में हमने देखा था, उसकी सिद्धि करने से कोई तिलक लगा करके और उसमें मंत्र सिद्धि कर ले तो उसको जो देखेगा आकर्षित हो जाएगा। तो बहुत तरह के सम्मोहन मंत्र हैं। तो ये नजरे क्या मंत्र जानते हैं जो कृष्ण को वो वशीभूत कर रखे हैं? श्री गोष्ठ नागर श्री कृष्ण को वशीभूत और मोहित करते हैं। तो वो ब्रह्मा से बात क्या करेंगे, हमसे बात इतनी कर सकते, मैं भी यदि जाऊं समय में बात की। एक समय में गया और देखा जो यशोदा जी कृष्ण को डांट रही है, पर ब्रह्म को डांट रही है और कह रही है तुम्हें गोदी कभी नहीं लूंगा और स्तन नहीं पान कराऊंगी, और कृष्ण लल करके रोल करके मिट्टी में गिर करके इधर से इधर ठुमिलिया खा रहे हैं, लोट पोट कर रहे हैं। जब तक उन्होंने लिया तब तक लोट पोट करते रहे। कृष्ण उनको चढ़ना चाहता है, उनको नहीं लेती है गोदी में, कहे कौन सी तपस्या इस यशोदा ने, मैया तुम्हें कौन सी तपस्या है, कौन सा व्रत किया। किंतु उस समय में कृष्ण से बातचीत कर सके या यशोदा जी से, दूर से देख रहे हैं बस, इनकी लीला में भंग न हो जाए इसलिए बातचीत नहीं कर सके। बड़ी मुश्किल से एक समय केवल इतनी लीला में बस वही केसी पद के बाद में उन्होंने बातचीत किया थोड़ा सा, और इसके बाद में बातचीत ही नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे यदि भक्त जो मैं हूं, हम लोग के लिए भी एक क्षण भी कृष्ण बातचीत नहीं करना चाहते हम लोगों से, क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि वशीभूत हैं, प्रेम रस का आस्वादन करने वाले हैं और हम लोगों में ऐसा प्रेम है नहीं। कृष्ण को दर्शन करने से हम लोगों को कोई इतना भाव नहीं आया, और ब्रजवासियों को आंख से आंसू आने लगे, अष्ट सात्विक कार हो जाएगा, न जाने क्या क्या स्थिति उनकी बन जाएगी। कहते हैं कि वो जो कालातीत, कालातीत ज्ञान संपत्ति भाजन अस्माकं जो पूज्य पाद समन्ता वैकुंठस्य उत्तमानंद पूर भाजामेशं जावदानं अपीज्या। ब्रज की जो स्त्रियां हैं, रमणियां हैं, या वहां के जो भी ब्रजवासी हैं, ज्ञान संपत्ति के अथाह भंडार हैं। गोपियां जो हैं या वहां के पशु पक्षी भी हैं, ज्ञान के अथाह भंडार हैं, और हम लोग उनके शिष्य होने योग्य भी नहीं। नारद और ब्रह्मा इत्यादि जितने भी उनके शिष्य होने योग्य नहीं है उन गोपियों के। ऐसा कि कालातीत वैकुंठ वासी हैं और द्वारका वासियों के भी पर पूज्य हैं ये। ऐसा मान लीजिए गोपियां कुछ भी नहीं जानती हैं, अज्ञानी हैं, किंतु कृष्ण को भी मट्ठा खिला दिया, घोल खिला दिया, उनके ऊपर भी उनको उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं, ऐसे कृष्ण को बना दिया। कृष्ण भी बगल झांकने लगते हैं, उनको कठपुतली बना देना ये गोपियों के लिए ही संभव, और कोई उनको कठपुतली नहीं बना ऐसे। जरा वो द्वितीय ले आना तो जूती ला रहे हैं। ब्रह्मा जी कहेंगे ना, नारद जी कहेंगे कभी ना, वैकुंठ का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्षद है, लक्ष्मी जी भी नारायण को कहेंगे जरा जूती ले आना, तो कहने का साहस किसी में नहीं है। द्वारका में कोई कहेगा सत्यभामा रुक्मिणी और उद्धव तो सबसे से कहेंगे ये जरा जूती तो ले आना, नहीं कर। हम समझते हैं कि राधा जी की दासियां भी ललिता विशाखा, जरा राधा जी की जूती ले आना तो भाई तो दौड़ करके लाएंगे। मनाएंगे, हजार बार मनाएंगे। राधा जी कहेंगे हमारा वो पैर का आवता मिट गया है, जरा इसको साफ सुथरा करके और इसमें अलता पहना दो, अलता लगा दो। बस वो क्या करेंगे, बड़े प्रेम से अपनी गोदी में ले लिया उनका पैर और मेहती रचा दिया। ऐसी सेवा में अपने को कृतार्थ मानते हैं भगवान, ऐसा कहां भी है, ऐसा कुछ नहीं। तो कृष्ण को मंत्र और औषधि से वशीभूत नहीं किया जा सकता है, किस चीज के द्वारा? कृष्ण भावों के आस्वादक हैं, भावों का आस्वादन करते हैं, और किस चीज मंत्र औषधि से उनको वशीभूत किया जा सकता है? द्रौपदी जी से पूछा हस्तिनापुर की रानियों ने, द्वारका की रानियों ने द्रौपदी जी से पूछा, ये हम तो 16108 है और आप अकेले हैं, तो आप, आपके पति हैं 5 और पांचों को मुट्ठी में बंद कर रखा है, जो कहती है वही करते हैं, और हम 16108 एक एक स्वरूपवती गुणवती शीलवती सब प्रकार की योग्य हैं, और कृष्ण हमको तृण भी नहीं सुना। हम लोग हजारों रहेंगे और चिंता करते हैं कहाँ की, बस गोपी उनके सामने उनको पकड़ करके अंचल कहते हैं कि अरे ललिते तू कहाँ है, ऐसे ऐसे रोने लगते हैं और हम लोग को पूछते हैं तो तुमने अपने पतियों को कैसे वशीभूत किया जरा बताओ, तो कोई मंत्र से किया या जादू से किया या टोना कर दिया या कोई औषध खिला दी, ऐसा हो गया? नहीं, खबरदार ये मत करना, पति को वशीभूत करने के लिए किसी व्यक्ति को वशीभूत करते हैं मंत्र और औषधि का व्यवहार कर, तो हो सकता कि वो पागल हो जाए, तो खबरदार मत करना, उसे वशीभूत नहीं होगा और शत्रुता बढ़ जाएगी, जीवन नष्ट हो जाएगा। हाँ, एक भाव, मैं उनके उठने के पहले उठती हूँ और सोने के बाद में उनको खिला करके तब अपने हाथों से परोसती हूँ, और रसोई किसी को मैंने बनाने दी और परिवेशन तो एकदम किसी से नहीं कर, अपने हाथों से रसोई बना करके अपने हाथों से उनको परिवेशन करता हूँ, पंखा जलती हूँ, सुंदर पानी देती हूँ, हाथ फुलाती हूँ, इसके बाद में और तंबू विधिका इत्यादि जो कुछ देना है उनको सुला करके पैर दबा करके जब विश्राम करने लगते हैं करने आते हैं, अपना बर्तन तर्तन ये सब कभी चाकर यहाँ के वन में तो चाकर नौकर तो है नहीं, वहाँ पर खुद साफ कर करके तब अंत में सोते हैं, इसलिए हमारे पास इस प्रकार का वो तो उसमें भाव है, जिसका भाव जितना ही उन्नत होगा उतना ही उसी के वशीभूत भगवान रहेंगे, और जिसके अंदर में भाव नहीं है, कर्कश स्वभाव है, कठोर स्वभाव है, भगवान वशीभूत नहीं है। इसलिए भगवान को भावावास्वादन लोलुप है, यदि सखाओं के साथ हैं और कोई वृंदादी जी ने इशारा कर दिया, श्रीमती जी आई हैं और सूर्य पूजा के लिए जा रही हैं, बस इतना इशारा कर दिया, सूर्य के तरफ इशारा कर दिया और फूल ले लिया, बस सूर्य के तरफ में दे दिया, वृंदा जी कृष्ण समझ गए ये यहाँ के लिए इंगित कर रहे हैं, इसी का नाम संकेत है। कहाँ सूर्य स्थान है, सूर्य को बस सूर्य के तरफ इशारा करूं समझे वहां। अब उन्होंने क्या किया है, सखाओं से काजे गोचारण कर रहे हैं, उसे जोग माया को आश्रय कर लिया, सखाओं को भी मोहित कर दिया, कज मैं अभी तुरंत पानी पी करके आ रहा हूँ, पानी पी करके आ रहा हूँ, ये कुंड में तुम लोग यहाँ पर जरा गैया देखना, कहीं इधर उधर गाय ना हो जाए, बस ऐसा उनको देख करके चकमा और थक करके बस झट उनको लेकर के चले गए। किन के लिए? गोपियों के लिए। तो इसलिए सख से बढ़कर के वो है ना, सखरस का भाव है, बहुत उत्तम है, ये नारद इत्यादि को भी बातचीत नहीं करेंगे उस भाव में मत होने पर, किंतु उन सखाओं को भी भूल जाते हैं और उनको छोड़कर छटपटाते हैं, उनसे मिल लेते हैं, रात में सो रहे हैं चिंता किया है, कैसे गोदी में, माता पिता को भी, माता जी गोदी में लेकर के सो रही हैं, पर झट निकल गए, माता जी सोते ही रह गए। इसलिए वात्सल्य भाव से भी श्रेष्ठ वो भाव है जिनका जितना ही विशाल और उत्तम भाव है उसके द्वारा भगवान ऐसे ही वशीभूत हो जाते हैं। यह भावनी महा औषधि है। तेषां तदा शक्तिरपि चक्वापाच्या येनन्दगोपस्य कुमारमेनं प्रेम्णा विदन्तो बहुसेवमाना सदा महित्यै एव नयन्ति कालम्। ब्रजवासियों की कृष्ण में जो आसक्ति है उसका कौन वर्णन कर सकता है। कृष्ण की भी आसक्ति गोपियों में है, माता में कृष्ण की आसक्ति है ना? और माता जी की कृष्ण में आसक्ति है, दोनों में किसकी आसक्ति बड़ी है? कृष्ण को प्यार करती हैं यशोदा जी और कृष्ण अपने मैया को प्यार करते हैं। इन दोनों को प्यारों को अलग अलग फल पे फल रखो तो कौन भार होगा? यशोदा माँ का प्यार। कृष्ण और गोपियों को जो प्यार करते हैं और गोपियां कृष्ण को प्यार करती हैं, गोपियों के प्यार का पलरा कृष्ण का प्यार बिखरा हुआ है, बहुमुखी है ना? जो भक्त है सबको उनको आदर करना पड़ेगा, स्नेह करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण का स्नेह बट गया। चंद्रावली में है, राधिका जी भी है, 16,000 सखियां हैं उनमें भी है, मैया में भी है, सखा में है, गायों में है, सब जगह बिखरा हुआ है। और उस गोपियों का प्रेम बस एक और उनका कहीं बिखर नहीं गया, इसलिए उनका प्रेम का पलरा अधिक भार है। इसलिए क्यों उनको भगवान नहीं जानती हैं? यदि भगवान जानती तो उनका प्रेम बिखर जाता। खूब ध्यान से सुनो, अरे कृष्ण भगवान है, नारायण भी भगवान है, नृसिंह भी भगवान है, बामन भी भगवान है, भगवान के 24 अवतार हैं, हजारों हजारों अवतार हैं, सभी भगवान हैं, सब में बट गया ना। किंतु गोपियों का प्रेम नंदनंदन में है, भगवान में नहीं है। नंदनंदन भगवान है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, वो भगवान पर विश्वास ही नहीं करती है नंदनंदन भगवान, बस एक में उनकी निष्ठा है नंदनंदन। यदि भगवत बुद्धि हो जाती तो उनका प्रेम बिखर जाता, ऐश्वर्य से दब जाता। किंतु उनका नंदनंदन के अतिरिक्त, यशोदा नंदन के अतिरिक्त, ब्रजेंद्र तनय के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं आता। भूल गई, हम कृष्ण को अभी भी भजन भी करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, किंतु भगवत भाव पहले आएगा इसके बाद में। और उनको हजार बार कहा जाए जैसे ये भगवान है तो वो हजार बार भगवान को प्रत्याख्यान कर, किसी ने कह दिया ये भगवान है तो वो कहेंगे भगवान कैसे हो गया, कब से हमारा स्तन का दूध नहीं देने से बिगड़ जाता है, हड्डियां फोड़ देता है, जिसको क्रोध है, काम है, झूठ बोलता है, चोरी करके खाता है, भूख और प्यास को रोक नहीं सकता, ये भगवान कैसे हो सकता, उनको विश्वास ही नहीं है। और भीष्म पितामह क्या कहेंगे, उद्धव और नंद, उद्धव जी क्या कहेंगे, ब्रह्मा जी कहेंगे, नखल गोपिका नंदनो अयम विखनसा अर्थितो विश्वगुप्त, कहते हैं यशोदा जी के लड़के, नहीं 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 यशोदा जी देवकी के लड़के, अरे ये यशोदा और देवकी के लड़के नहीं, ये कौन है? विश्वगुप्त, विश्व की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा की प्रार्थना से स्वयं विष्णु जी आए, सहस्त्र शिक्षा, जिनके सहस्त्र मुख हैं, सहस्त्र पैर हैं, चारों तरफ देखते हैं, बिना पैर के सुनते हैं चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना मुख का खाते हैं, सब कुछ ध्यान करते हैं, जिसे समस्त विश्व ब्रह्मांड में निकला है वो विष्णु ही है। कभी भी हमारे भीष्म पितामह जी उनको नंदनंदन कहेंगे नहीं कर सकते, देवकी नंदन भी नहीं मानेंगे, वो क्या कहेंगे, ये विराट कर्म है, उनको विश्वास ही नहीं। इसलिए उन्होंने भीष्म पितामह जी ने बाण मारा तो सोचा कि इनको बाण कहाँ से लगेगा, ये झूठ है, ये सब मूर्ख लोग देख रहे हैं ये बाण लग रहा है। यदि उनको आग नहीं जला सकती, पानी भी जा नहीं सकता, शस्त्र उन्हें काट नहीं सकते तो हमारा बाण लग सकता है, ये झूठ की बात है। बस उन्होंने खूब बाण मारा और जी गोस्वामी तरीके उनमें असुर समा प्रवेश कर गया था। इसलिए कहते हैं कि जो कृष्ण को नंदनंदन नहीं जानते, भगवान नहीं जानते, हम लोगों में कभी तत्व ज्ञान नहीं, अच्छी तरह से भक्ति नहीं है, प्रेम ही नहीं है। जितना अधिक प्रेम होता जाएगा कृष्ण या कृष्ण इत्यादि भगवान से नीचे होते चले जाएंगे, ये साधारण नर बालक हो जाएंगे, किसी के प्रियतम बन जाएंगे, किसी के सखा बन जाएंगे, किसी के प्रियतम बनेंगे, किसी के पुत्र बन जाएंगे। भगवान का भाव जितना ही दूर होगा उतना ही प्रेम का विकास होगा और उसी प्रेम के द्वारा ये वशीभूत होगा। और ये भगवान है ऐसा समझ करके प्रेम करने से भगवान प्रसन्न तो होंगे किंतु वशीभूत उस प्रेम से नहीं। द्वारका में, अयोध्या में और बैकुंठ में यह भाव परिपूर्ण है। द्वारका में कुछ कम, राम में भी कुछ कम, बैकुंठ में अभी। इसलिए कहते हैं कि वो नंदनंदन रूप से समझ करके उनकी जो सेवा करती हैं, सेवा में भी कहते हैं कि तृप्ति नहीं होती। गोपियों को कृष्ण सेवा से कभी भी तृप्ति नहीं, सब समय अतृप्त रहती हैं। और ज्ञानी इतने जो ब्रह्मा इत्यादि भी, नारद जी का भी ज्ञान वहां पर नहीं जा सकता है, इतनी अधिक ज्ञानी है, किंतु ज्ञान का प्रयोग नहीं करती, यही उनमें माधुर्य है। एक दादू है, दादू समझ रहे हैं, दादू है, और एक उनका नाती है, नाती 5 वर्ष का है और दादू जी हैं 100 वर्ष के पुराने, तो दोनों बैठ रहे हैं, बातचीत बने, दादू भी बच्चे के बच्चे बन गए हैं और वो भी वैसा ही बन गया है और दोनों में हंसी मजाक इधर उधर, वो ऐसे बन जाते हैं दादू उस बच्चे के समान बन जाते, नहीं तो फिर प्रीति नहीं होगी। पिताजी तो डांट देंगे लड़के को, किंतु वो नहीं डांटेंगे, ठीक वैसा ही बन करके, और जैसा कुछ समझते नहीं है, जानते ही नहीं है, ऐसे एकदम भोरे भारे वो बन जाते हैं। ठीक वैसे भगवान भी इन लोगों के सामने भोरे भारे बन जाते हैं जिसको प्रेम होता है। तो ये गोपियां भी, गोप भी इतने ज्ञानी होने पर भी कोटि कोटि ब्रह्मा तपस्या करें, कोटि कोटि जन्म तक कभी उनके चरण की धूलि को नहीं पाएंगे और वो गोपियां भोरी भारी बन जाती हैं। तो ये कालातीत ब्रजवासी काल के अतीत हैं, ब्रह्मा जी काल के अधीन हैं, हम लोगों के सर्वथा पूजनीय है। और की तो बात क्या, द्वारका की महिषियों की भी ये लोग पूजनीय है, ब्रजवासी। कृष्णेन प्रतिजना किल मोहितास्ते तय सव्यामोहि भगवान इति सत्यमेव गत्वा मये महि विस्मृता एतदेव कार्ये अनुस्मारित किमपि कृतं महो कथञ्चित्। ओ मैं ब्रज में गया, मैं इन बातों को विश्वास नहीं करता था, किंतु मैं ब्रज में जब गया और देखा जैसे ये तो गोप गोपी और ब्रजवासियों के द्वारा अत्यंत मुग्ध हो गए हैं, मोहित हो गए हैं और किसी भी काम का इनको ज्ञान नहीं है कि किस लिए जगत में आए हैं, सब भूल गए। यदि मैं ब्रज में नहीं जाता तो हमारा यह मोह नहीं छूटता। मैं भी तब यही कहता कि कृष्ण ने इनको मोहित कर रखा अपनी माया से, ब्रह्मा जी को मोहित कृष्ण ने किया ना, बलदेव जी को भी मोहित कर दिया था कृष्ण ने, और ऐसे कृष्ण को मोहित किसने कर दिया, मोहित कर दिया। कथम कथम अपि प्राज्ञेन अक्रूरेण बलादिव प्रजान माधुरी नीतो जदुनां हितमिच्छिता। अब कहते हैं जैसे किसी ने प्रश्न किया ऐसा, तो फिर ऐसे जहां पर जिस कृष्ण का प्रेम है, जो सबसे सुख का स्थान है, उसको छोड़कर के मथुरा में क्यों आए और फिर द्वारका क्यों चले गए, जहां पर सब प्रकार का सुख है, आनंद है, वहीं पर आदमी निवास करता है और जहां दुख है वहां नहीं रहता। इसलिए कृष्ण ब्रज को छोड़ जब दिया तो उससे श्रेष्ठ मालूम होता है कि मथुरा द्वारका ही श्रेष्ठ है, इसलिए छोड़ करके चले। नारद जी कहते हैं ऐसा मत कभी संशय करना। कहते हैं कि कृष्ण की जाने की इच्छा नहीं थी, किंतु अक्रूर ने इधर उधर बहाना बतला करके चलाकी चतुराई करके छल कपट के साथ में वो ले गए मथुरा, और मथुरा से फिर वो चले गए। अपने मन के स्वभाव की स्थिति से नहीं गए, जाने का कुछ कारण हो गया, जिस बात को करके जाना, तो जब जाना पड़ा इसलिए वही स्थान श्रेष्ठ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। एक आदमी अपने घर पर रहता है, अपने माता पिता के साथ में रहता है, पढ़ा लिखा, MBA पास किया, और उसको कलकत्ते में नौकरी मिली मथुरा का रहने का। अब वहां पर उसको 2000 रुपया महीना मिल रहा है, तो वहां पर चला गया। कलकत्ते में घर मिलना बड़ा कठिन है किराए का, एक फ्लैट लिया उसने, कम से कम तो महीने में उसका 800-900 या 1000 रुपया अवसर खर्च होता है, और उस फ्लैट में भी छोटे से घर हैं, गर्मी लगती है, हवा भी ठीक पास नहीं होता है, बड़े कष्ट सस्ते से उसी घर में रसोई बनाते हैं, उसी घर में रहते हैं, किसी प्रकार से करते जाते हैं, जनरल उसमें कष्ट से रहते हैं। और वहाँ जाते हैं, कलकत्ते में रहते हैं, एक बरस उसमें 2-4 दिन की छुट्टी के लिए या 5 दिन के लिए छुट्टी आती है, तो कहाँ पर अधिक बास किया, घर में ना वहाँ कलकत्ते में बास किया, वहाँ नौकरी कर लिया, तो घर प्यारा है ना, वो स्थान प्यारा है। अरे भाई घर के लिए ही तो, बाल बच्चों के लिए तो वहां पर इतना कष्ट कर रहे हैं, इतना कष्ट हो रहा है, किंतु विशेष कारण से वहां पर नौकरी नहीं मिली, हमको पैसा नहीं मिलने से हमारे बाल बच्चों को और स्त्री और बच्चे को हम अच्छी तरह से पालन नहीं कर सकते, इसलिए कष्ट सह करके भी वहां पर है। इसी प्रकार से कृष्ण कष्ट सह करके किसी विशेष कारण के लिए वहां है, स्वाभाविक रूप में प्रीति के लिए नहीं, ऐसे समझना चाहिए। दूसरी बात नारद जी कह रहे हैं, अच्छा अक्रूर को के साथ में गए, बता रहे हैं अक्रूर जी गए ब्रज में, कब गए, कृष्ण के जन्म के बाद में करीब करीब जब कृष्ण 10-11 वर्ष के हो गए, अर्थात उस समय कृष्ण किशोर अवस्था में प्रवेश कर गए, साधारण लोगों के लिए 12-13 वर्ष की उम्र है। कृष्ण 12-13 वर्ष की उम्र में कैसे हो गए, अगासुर बकासुर ये सबको मारने वाले, और भगवान तो ही है, बल बुद्धि इत्यादि का विकास उसी उम्र में हो गया, केशी दैत्य भी मारा गया। अब उसके पास में ऐसे कोई वीर नहीं थे जिसको भेज करके कृष्ण को मरवा सके, उसने मंत्रणा की, जो बाकी रह गए कौन, चारुण मुष्टिक और कालजवन को बुलाया, और अपने ससुर को बुलाया, ससुर कौन, और अपने अत्यंत निकटतम मित्र शिशुपाल दंतवक्र, ये सब अपने बड़े इष्ट मित्रों को बुला करके कहा भाई अब क्या करना चाहिए, प्रिय बंधुओं के साथ ही तो हितैषियों के साथ ही मंत्रणा होती है, मंत्रणा हो लगे रात, कोई कहे उसको कोई काटे, करते करते सारी रात की, अंत में निर्णय हुआ कि भाई अब किसी को भेज करके और उसको मरवाना कठिन है, ये तो मार डालेगा, किसी प्रकार से यहाँ लाना ही उचित है। तो किसी ने कहा, जरासंध जी ने प्रस्ताव दिया या किसी और ने, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि तुम चले जाओ ब्रज में और वहीं पर तुम मार करके चले आओ, प्रस्ताव दिया कि तुम ही चले जाओ। तो कंस ने कहा जिसे मैं नहीं जाता, अरे भाई तुम चले जाओ जरा देख तो आओ, तो मैं कभी जा ही नहीं सकता। तो भाई भाई क्यों नहीं जाओगे, तो जाने लगे बतलाए नहीं, किंतु मन में उनको याद आई, खबरदार अब मैं नहीं जा सकता, कान पकड़ता हूँ, इसलिए कि मैं एक बार उतना वध के बाद में मैं गया था, चेष्टा की थी उसको मारने के लिए गया, और गोकुल में मैं पहुंच गया गोकुल तक, अब पहुंचा था इतने में कोई बुढ़िया मिल गई, बुढ़िया मैंने कौन, যোগ মায়া পৌর্ণ মাসে। তোর বুড়িয়া মিল গই, নাম তো জানতা নেই, বুড়িয়া মিল গই। তু কন হে রে, তু কাহা সে আ গিয়া মারা, আর যো গালি দেতি হ্যাঁ ব্রজ কি না, কাহা সে আ গিয়া তু মারা। তো ইধর অগল বগল ঝাঁকনে লাগা, বস উসকো পকড় দিয়া, জিসনে বড়ে বড়ে হাতিও কো ফেঁক দিয়া, জিসকে ডর সে জরাসন্ধ কাঁপ গিয়া, আর সব লোকো কো বশীভূত কর দিয়া। এসে আদমি কা হাত পকড় করকে মন্ত্র কি ভাতি, আর উসকো এক পানি মে লেকর ডুবা, হাত নাই ছোড়া, আর হাত সে নিকল করকে ভাগ ভি নাই সকা, কঠপুতলি কে তরহ ডুবায়া আর উঠা দিয়া। দেখা যে মে পুরি জরট, দাঁত নেই, শেষ পকে হুয়ে, থর থর কাঁপ রহি হ্যায়, কপড়ে গত্তে বেসে হি পুরানে ধুরানে পড়ে। কাজে বেঠ ইয়াঁ, বেঠ বরকে গোবর রখণ্ডা দো লগাও। ইতনে মে কোই দুসরি আ গই, উসনে এক থপ্পড় লাগে, কণ্ডা নেই জানা বানা না জানতি, কিসি নে লাত সে দু চার লত্তি দু লত্তি জমা দি। দিন ভর জো আয়ে মারে পিটে বেসে হি কর, বড়ি দুর্দশা। কিসি নে দয়া করকে কুছ খানে কে লিয়ে লো মঠা দে দিয়া খিলা দিয়া, আর বাজরে কি রোটি দে দি মোটি সি। কিসি প্রকার সে এসে কুছ দিন চলা, হ্যাঁ ক্যা দশা, যদি মে ভাগ করকে যাও তো হম মথুরা মে পৌঁছ যায় তো হমক দে করকে ক্যা লোক কহেন, জেসে ইয়ে কন, ইয়ে তো হ্যায় কই ভাঁ কি বুড়িয়া, কংস কে রূপ মে তো হমে পহচানি নেই, ইলে আর যায় ভি নেই তো যায় তো কহাঁ। বড়ি লজ্জি শরমাতি, আর উনকি গালি গলজ, আর ইয়ে মারপিট খাতি খুশি কুছ দিন রই। ইসকে বাদ মে ফির ওই বুড়িয়া আয়ে, ফির করেগা, ফির আয়েগা তো নেই, আব কান পকড়ো জব নেই আনি, কান পকড়া তো ফের লেকর কে ডুবা দিয়া, আর নিকালা তো কংস মানে জত জত ভাব, আর ফির মত আনা, সীমা মে মত প্রবেশ করনা, বস ওয়াহ সে ভাগ। ইসলিয়ে ডর কে মারে কবি বোর নেই আতা, ইসলিয়ে সোচা।